हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं हिज ग्रेस राधा श्याम सुंदर प्रभु। तो प्रभु जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। प्रभु जी प्रथम बार शायद यहाँ कक्षा दे रहे हैं इस्कॉन पंजाबी बाग में। तो प्रभु जी ने इस्कॉन वृंदावन फुल टाइम ज्वाइन किया 1990 में। तो पिछले लगभग 30 वर्षों से प्रभु जी इस्कॉन श्रील प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त हैं। वहाँ पर प्रभु जी ने बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाएं की। बुक डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद वो संकीर्तन लीडर रहे 5 वर्ष तक। उसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट, न्यू भक्त इंचार्ज, लाइफ मेंबर डिपार्टमेंट, प्रीचिंग डिपार्टमेंट, साथ में प्रभु जी टेम्पल प्रेसिडेंट भी रहे इस्कॉन इंदौर के, उसके बाद इस्कॉन लखनऊ के, उसका इस्कॉन नोएडा के, और अभी वर्तमान में प्रभु जी इस्कॉन वृंदावन में जो नामहट प्रीचिंग डिपार्टमेंट है उसके डायरेक्टर हैं। और ये नामहट प्रीचिंग डिपार्टमेंट कार्यक्रम विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया से जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से अलग अलग जितने तीर्थयात्री आते हैं उनको हरिनाम के विषय में बताता है, उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स करता है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा इत्यादि जहाँ से लोग आते हैं, प्रभु जी अलग अलग वहाँ गाँव में जाकर भी प्रचार करते हैं। और अभी प्रभु जी संन्यास कैंडिडेट हैं, संन्यास कैंडिडेट हैं और अभी विभिन्न विभिन्न जगहों जाकर प्रचार कर रहे हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यमुनान्तर्जले मग्न यमुनान्तर्जले मग्न तप्यमानः परं तपः निव्रतीम मीनराजस्य दृष्ट्वा मेथुन धर्मिणः जात इस्प्रहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सोप्याह गृहत्ताम् सोप्याह गृहतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयं वरे सोप्याह गृहतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयं वरे यमुनान्तर्जले मग्नः तप्यमानः परं तपः निव्रतीमीनराजस्य दृष्ट्वा मेथुनधर्मिणः जात इस्प्रहो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचतः सोप्याह गृहतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे। तो एक एक श्लोक बोलेंगे और दो भक्त बोलेंगे। तुम यमुना अंतः जले यमुना नदी के गहरे जल में मग्नः पूरी तरह डूबकर तप्यमानः तपस्या करते हुए परम असामान्य तपः तपस्या निवृत्ति आनंद सुख मीन राजस्य बड़ी मछली का दृष्ट्वा देखकर मैथुन धर्मिणः मैथुन रथ प्रातः स्प्रह जातः स्प्रह मन चलायमान होठा नृपम राजा मंदाता के पास विप्रह ब्राह्मण सौवरी ऋषि कन्याम एकाम इकलौती कन्या अयाच्यत मांगा सह उस राजा ने अपि भी आह कहा गृह्यताम आप ले सकते हैं ब्राह्मण हे ब्राह्मण कामम चाहती हैं कन्या पुत्री स्वयं बरे स्वयं चुनाव में स्वयंवर में। तो अनुवाद और तात्पर्य अवेचनार भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है, सौवरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या में लीन थे कि उन्होंने मछली के एक जोड़े को संभोग रत देखा। इस तरह उन्होंने विषयी जीवन का सुख अनुभव किया, जिससे प्रेरित होकर के वे राजा मंदाता के पास गए और उनसे उनकी एक कन्या की याचना की। इस याचना के उत्तर में राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरी कोई भी पुत्री अपनी इच्छा से किसी को भी पति चुन सकती है। तात्पर्य, यहां सौवरी ऋषि की कहानी का शुभारंभ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मानधाता मथुरा का राजा था और सौवरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि में कामेच्छा जागी तो भी जल से बाहर निकले और राजा मंदाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह उनसे कर दें। हरे कृष्णा। तो आप सभी के लिए हम जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो आप इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित हैं, और विशेष करके हम पंजाबी विभाग इस्कॉन के जो टेम्पल अध्यक्ष हैं हिज ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का, उनका हम बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें जो है यहाँ इनवाइट किया इस भागवत कक्षा के लिए। वैसे तो हमारी क्षमता नहीं थी, मैं तो बहुत डरा हुआ था क्योंकि आज तक मैंने कभी इधर आया तो था लेकिन कभी भी क्लास नहीं दी। तो फिर एक बार तो सोच रहा था कि मैं ना कर दूँ कि मैं नहीं दे पाऊँगा, फिर सोचा मैं कब तक मैं ना करता रहूँगा, कभी ना कभी तो उतरना ही होगा फील्ड में तो जो है तो इसलिए हमने सोचा कि जो भी होगा ठाकुर जी की इच्छा से देखते हैं। तो इसलिए आप सभी का हमें आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है जिससे हम कुछ बोल पाएंगे। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है तो हम कुछ श्लोक पीछे हैं इसमें, तो उससे हम चर्चा करते हैं श्लोक संख्या 28 से। तो यहाँ जो है महाराज मनु और मनु से जो इच्छांकु हुए, इच्छांकु वंश का वर्णन चल रहा है और इसी वंश में जो है फिर मंदाता जिनके यहाँ सौवरी से जो है अभी चर्चा चल रही है अभी चलेगी आगे चल करके, तो उसी वंश में फिर मांधाता आते हैं। और ये मांधाता कहाँ के राजा थे? मथुरा के राजा थे, ठीक ना। तो इसी वंश में आगे चल करके जो है फिर आएंगे इच्छवाकु वंश में, फिर आगे चल करके कौन आएंगे? भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। तो इसलिए ये बहुत पवित्र वंश है, इन राजाओं के बारे में सुनने से। हालांकि ऐसे लगता है कि जो है इस सारे चीज की क्या जरूरत है, इतने सारे राजाओं का वर्णन उनका, तो लेकिन वास्तव में ये जो है राजा नहीं है, ये सब राज ऋषि हैं। राजा होकर के भी ये सब कैसे हैं? ऋषि हैं, बड़े बड़े ऋषि हैं। दर्शने पवित्र करे ए ही तुम्हार, जिनके दर्शन मात्र से ही जो है पवित्रता आती है। तो इसलिए जो जो मंदाता इसके बारे में, इसके ही वंश में जो है आगे ऊपर जो है इच्छाओं को वंश में जो है फिर यौवनाश हुए, तो जिनका ये प्रसंग यहाँ से जो है चल रहा है। तो हम प्रसंग के अनुसार चलेंगे और ज़्यादा समय नहीं देंगे इसमें, क्योंकि हम चर्चा करेंगे फिर यहाँ से, ठीक है ना। तो उत्तिष्ठास्ते निशम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो प्रपक्षुः कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम्। अर्थात जो है ये जो प्रसंग चल रहा है कि महाराज युवनाश जिनकी 100 पत्नियां थी लेकिन बच्चा एक से भी नहीं था, तो इसलिए बेचारे बड़े दुखी थे संतान के लिए। तो संतान नहीं होने के कारण उनको बहुत जो है दुख महसूस हुआ बिना संतान के। देखा जाए तो वैसे कभी कभी बहुत भगवान संतान नहीं दिया या पत्नी नहीं दिया, ये देखा जाए तो एक प्रकार से कृपा ही है ठाकुर जी की, है कि नहीं? भजन अपने आराम से कर सकते हैं, या संतान हुई, बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, सारी फैमिली हुई, तो उससे वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहां कुछ नहीं है वहां से तो आराम से जो है निकला जा सकता है। तो महाराज युवनाश के लिए अच्छी बात थी कि जो है संतान नहीं है। ऐसा ही प्रसंग सेम जो है यहाँ जो प्रसंग आ रहा है, सेम ऐसा ही प्रसंग आता था उसमें जो है क्या नाम है, चित्रकेतु है, महाराज चित्रकेतु के उसमें भी आता है प्रसंग आता है। जब संतान हुई तो जो है फिर उनसे हालत खराब हो गई उनकी। ऐसे जो है और भी आता है, गोकर्ण के जो पिताजी थे, क्या नाम है उनका, आत्मदेव, वो भी जो है घर छोड़ करके चले गए, बच्चा नहीं आया है, तो क्या घर गृहस्थी। जो बच्चों का सुख है, जो तोतली बोली जब बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि सारे ब्रह्मांड का सुख यही है। तो फिर वो बेचारे देखा कि बिना बच्चों के जो है घर में क्या है, कुछ नहीं है, तो वो भी जंगल में चले गए थे। तो कहने का आशय है कि वास्तव में जैसे भगवान जो है क्या नाम है जिनका जो है कभी कभी जो है देखा जाता है कि ये बच्चे नहीं होना या पत्नी नहीं होना, ये देखा जाए तो एक प्रकार की इसको भगवत कृपा समझना चाहिए, क्योंकि उनको छोड़ना तो है संसार, है कि नहीं? जितना हमारी संसार में आसक्ति रहेगी, और ये आसक्ति तब ज्यादा रहती है जब हमारा पूरा परिवार भरा पूरा रहता है, तब ज्यादा आसक्ति, जब कुछ नहीं है तो किस में आसक्ति होगी। तो इसलिए एक प्रकार से जो है बहुत अच्छी बात है कि जो है संतान नहीं है, लेकिन बेचारे बड़े दुखी थे और छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए पत्नियों के साथ में। तो वहां फिर क्या हुआ, राजा पीतं विदित्वा वै ईश्वरः प्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रु रहो दैव बलं बलः। तो वहाँ उनके कुछ भेंट जो है कुछ अच्छे वैदिक जो उसमें जो है ज्ञान में निपुण थे, कर्मकांडी कुछ ब्राह्मण थे, या उनसे वहाँ उनकी भेंट हो गई, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के ब्राह्मण थे, टॉप मोस्ट जिसको कह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने उनका दुख देखा, जैसे आत्मदेव का दुख जब वो जंगल में छोड़ करके चला गया तो वहाँ एक एक साधु वो भी जो है घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई ये मैं जैसे घूम रहा हूँ लगता है ये भी कोई साधु महात्मा है, तो वो आत्मदेव के पास में राजी खुशी पूछने के लिए आ गए, भैया तुम कैसे घर से आए, मैं भी जो है ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए मैं घूम रहा हूँ, लगता है कि आप भी ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए घूम रहे होंगे, हम दोनों एक जैसे हैं। बोला मैं ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए नहीं घूम रहा, मुझे बच्चा चाहिए। अरे भैया और आपको देना पड़ेगा। अरे भाई भाई मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत सत्संग हो जाएगा, ये तो मेरे पल्ले पड़ गया, और नहीं दोगे तो यही सर फोड़ फोड़ करके मर जाऊंगा, फिर ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी, सोच लो। कभी कभी कहावत बोलते हैं ना, आबेल मुई मार, जबरदस्ती कोई जो है जबरदस्ती भिड़ जाता है, तो जो है तो यहां उन्होंने जो है उनकी भेंट ब्राह्मणों से हो गई, लेकिन ये ब्राह्मण बड़े कैसे थे, भक्त भी थे और वैदिक ज्ञान में बड़े निपुण थे, तो इसलिए उन्होंने एक यज्ञ संपन्न किया। तो उस यज्ञ में जो है क्या हुआ कि जो यज्ञ के मंत्रों के द्वारा एक जल को मंत्रित किया गया, और उस मंत्र को जो है इनकी पत्नी को पिलाना था। तो ये जो यज्ञ रात्रि के समय लगता है कुछ देर तक चला, तो इसलिए उन्होंने जो है शाम के समय एक समय के अनुसार यज्ञ बंद कर दिया कि चलो अब जो है जो सुबह की जो प्रोसीजर है जिसमें जो है पानी पिलाना वो करना, वो सुबह देखी जाएगी। तो यज्ञ बंद करके ये सब क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं ब्राह्मण जो है अपने कैंप में चले जाते हैं, ये महाराज युवनाश अपने कैंप में चले गए। लेकिन क्या हुआ, ईश्वर प्रहितेन ते, ते मतलब बे बे महाराज युवनाश ईश्वर प्रहितेन ईश्वर की ही प्रेरणा से, और क्या हुआ उन्हें जो है जबरदस्त रात को प्यास लगी। जब प्यास लगी तो क्या हुआ, अब उन्होंने जो है वहां पानी खोजा, जल खोजा, तो जल तो कहीं दिखाई नहीं दिया और उनको ये ध्यान भी नहीं रहा, और जो मंत्र जो है बच्चे के लिए जो जल जो है मंत्रित किए थे एक लोटा भरा वो रखा हुआ था, और कुछ ऐसी विस्मृति हुई तो उन्होंने क्या किया उसी लोटे को गट 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 करके वो पी गए, पी गए। अब तो वो तो बच्चे के लिए था, बच्चा उसे होना था किसी रानी के, तो अब ये महाराज पी गए। भगवान की विचित्र लीला होती है कभी कभी। मानो इनको ज्यादा ही कुछ चाह थी बच्चे की, इसलिए भगवान ने कहा देखो बच्चे का सुख क्या होता है, पहले तो जो बच्चा पैदा करते उनको कितना कष्ट होता है, उसका कष्ट आप झेलो। मान कुछ मतलब भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा थी, तो हुआ क्या वो मंत्र पानी को जल को जो है वो खुद स्वयं पी गए। तो उससे क्या हुआ, ततः काल उपाव्रत्ये कुछी निर्विद्य दक्षिणम युवनास्य च तनय चक्रवर्ती युवनास्य तनय चक्रवर्ती जजान मतलब जन्म दिए। तो हुआ क्या कि जो है अब वो तो जो है बच्चे के लिए था, बच्चा पैदा करने के लिए था, तो इसलिए महाराज ने वो पानी पिया, बच्चा तो उसे होना है, अब कहाँ से होना है, ये कोई अलग मतलब जहाँ से भी हो लेकिन बच्चे को होना है। तो अब वो क्या हुआ जो है महाराज गर्भवती गर्भ उनके अंदर हुआ, तो फिर एक कुछी को फाड़ करके उनके जो है और फिर क्या हुए एक जो है पुत्र का जन्म हुआ। कम धाष्यति कुमारोस अयम स्तन्येरो यते ब्रसम मा धाता पश्य मा रोदी इत इंद्रो देश नीम दात। अर्थात कम धाष्यति कुमारोयम तन्ने रो यते सुस्रम। जब बालक पैदा हुआ तो बालक को भूख लगी, अब भूख लगी तो जो है अब दूध चाहिए, अब दूध कहाँ से हो, ये तो जो है महाराज ने उन बच्चे को जन्म दिया था, तो इसलिए अब समस्या में आ गए।
तो समझ श्याम तब जो है देखे कि बच्चा रो रहा है, माँ धाता बस माम रोदित इति इंद्रो देसी नीमताम। तब इंद्र को जो है दया आ गई उनके ऊपर, और इंद्र ने जो है कहा रो मती, मैं तुम्हारी माता बनूंगी। तो इंद्र ने क्या किया, अपनी तर्जनी उंगली और बच्चे के मुख में दे दी, तो उसको वो चूसने लगा। न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्योत अतः तत्रैव तपसा सिद्धि न बकात। तो यहां पर बोल रहे हैं चूंकि वो बच्चा वास्तव में अब उनसे पैदा हुआ था महाराज से, तो होना तो ये चाहिए थे कि किसी न किसी का हरिबोल होना था वहां, किसी किसी की मृत्यु होनी थी, लेकिन चूंकि ब्राह्मणों का इतना तेज था, इतना बल था कि दोनों के दोनों ही वो क्या रहे, सलामत रहे, राजा भी सलामत रहे और बच्चा भी सलामत हुआ, अर्थात कोई भी मृत्यु का शिकार नहीं हुआ। इस घटना के बाद उसने कठिन तपस्या की और उस स्थान पर सिद्धि प्राप्त की। तो कालांतर में धीरे धीरे करके वो बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो फिर महाराज युवनास फिर तपस्या में लग गए, और तपस्या में लग करके जो है वो सीधे कहाँ चले गए, भगवान की धाम को चले गए। तो आगे चल करके माँ धाता मन धाता माँ धाता, मतलब इंद्र ने कहा था कि मैं तेरी माँ, मैं तेरी धाता बनूंगा, अर्थात मैं तुम्हारी माँ बनूंगा, इसलिए उनका नाम पड़ा माँ धाता मन धाता। तो त्रिदस्यस्योरितोन्द्रो अंग विदते नाम यस्य वै यस्यात्र संति हृदुग्विन दश्यवयो रावणादय यौवनाश्यो अतः मंधाता चक्रवर्ते बनी प्रभु सप्तदीप बती में कह ससास अच्युत तेजसा। तो ओ जो पुत्र था मंधाता इतना शक्तिशाली था उसका नाम पड़ा त्रिदस्यु, त्रस दस्यु, दस्यु बोलते हैं चोर डकैत लुटेरे जो ऐसे थे उनको, त्रास 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 का मतलब होता है कष्ट देने वाला, अर्थात इतना वो शक्तिशाली था कि जो चोर डकैत लुटेरे थे उनके लिए वो साक्षात यमराज करके पैदा हुआ था। तो उस समय जो है जब मंधाता जब इन्होंने राज्य को संभाला तो चारों तरफ जो है उनके राज्य में कोई भी चोर डकैत लुटेरा और यहाँ तक कोई अधार्मिक राजा भी वो भी सब कैसे हो गए, उनकी वीरता से उनके जो है शक्ति से, और सब बिल्कुल शांत हो गए, अर्थात जैसे कभी कभी चाय 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 वो करते हैं ना, क्या नाम चिड़ियाँ करती हैं तो नीचे ऐसे चक करो तो सब शांत हो जाती है। तो ऐसे ही जो बड़ा शोरगोल मचाए थे, त्राय त्राय प्रजा में मचाए हुए थे, जब महाराज मंधाता का जो है उन्होंने ऐसे शौर्य को देखा, तेज को देखा, बल को देखा, तो सब बिल्कुल शांत हो गए, फिर जो है कोई चाचू नहीं किया। और इतने वो शक्तिशाली से यमुना क्या नाम उनके पुत्र यमुना सिखे कि वो सप्तद्वीप पूरी पृथ्वी के जहां तक पृथ्वी है समुद्र पर्यंत तक और वो क्या बन गए, महाराज बने, शासक बने, अद्वितीय शासक थे ये। अद्वितीय का मतलब जिनके समान और कोई दूसरा इतना बलशाली प्रभावशाली जो है कोई शासक नहीं हुआ। इज्जे च यज्ञं क्रतुभिर आत्मविदु भीर दक्षिणै सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं द्रव्यं मंत्रो विधिर्यज्ञो यजमान तदर्थ त्विजः धर्मो देशस्य कालस्य सर्वमेतद्यत् आत्मकम्। उस महान यज्ञों के कल्याणकारी पक्षों अर्थात यज्ञ की सामग्री जो यज्ञ है, यज्ञ का भगवान भी एक यज्ञ, भगवान का नाम भी एक यज्ञ पुरुष है, तो यज्ञ भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान भी एक यज्ञ पुरुष है, तो इसलिए यज्ञ में जो भी सामग्री यूज होती है, जो भी सामग्री काम लाई जाती है, वो सब पवित्र होती है, दिव्य होती है, भगवान के ही समान होती है। जैसे बोलते हैं क्रतुर अहम यज्ञ सदा हम औषध मंत्रो अहम एवाज्य अहम अग्नि हम उत्तम, मतलब सब कुछ भगवान बोलते हैं कि मैं ये हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, होता भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, उसमें आहुति दी जाती है वो भी मैं हूँ, पात्र भी मैं हूँ, सब कुछ भगवान। तो सेम बात यहाँ दोहराई जा रही है कि यज्ञ की सामग्री वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण विधि विधान यज्ञकर्ता पुरोहित यज्ञ फल यज्ञशाला यज्ञ के मुहूर्त इत्यादि ये सब क्या है, भगवान यज्ञ पुरुष से बिल्कुल अभिन्न है, ये भिन्न नहीं है। तो मानधाता ने आत्म साक्षात्कार के नियमों को जानते हुए दिव्य पद पर स्थित परमात्मा स्वरूप उन भगवान विष्णु की पूजा की जिसमें समस्त देवतागण समाहित रहते थे। उसने ब्राह्मणों को प्रचुर दान दिया और इस तरह उसने भगवान की अर्चना करके अर्चना करने के लिए यज्ञ संपन्न किया। तो इसमें ये बता रहे हैं कि फिर मानधाता ने क्या किए, बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ की है और बहुत अच्छा, मतलब जिससे भगवान को प्रसन्न करने की सारी यज्ञ की, और उस यज्ञ में जो भी ब्राह्मण आते थे सबको क्या किया, उन्होंने प्रचुर दान दक्षिणा दे करके सभी को यथावत संतुष्ट किया। यावत सूर्य उदित स्म यावत च प्रतिष्ठित प्रतिष्ठति तत्सर्वम यौवनाश्य मंधाता तु क्षेत्रम उच्यते। जहां से सूर्य का प्रारंभ होता है, सूर्य होता है, और जहां सूर्य अस्त होता है तत्सर्वरम यौवनाश्य च पूरा उस क्षेत्र में महाराज यौवनाश के जो सुपुत्र थे मंधाता तु क्षेत्रम उच्यते, उनका ये सारा क्षेत्र कहलाता था, पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। सोच सकते हैं वो लोग कितने तब प्रभावशाली होंगे जिनके पूरी पृथ्वी पर एक छत्र सप्त द्वीप जो है जिसको नौ द्वीप बोलते हैं, पूरी पृथ्वी कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां उनका डंका नहीं बजता हो, बहुत प्रभावशाली राजा थे। तो ससह बिंदु दुहितरी बिंदु मस्याम धा निरप पुरकुत्सास अमरीशम मुचकुंदम च योगिनम तेसाम स्वसार पंचाशत सौवरी कब्री रेपति। ससा बिंदु की पुत्री बिंदुमती के गर्भ से मंधाता को तीन पुत्र हुए। तो इसका मतलब है जो ससा बिंदु थे उनकी जो पुत्री थी बिंदुमती, उनका जो है मंधाता के साथ में विवाह हुआ और उनसे तीन पुत्र हुए, उनके नाम थे पुरकुत्स अमरीश और योगी मुचकुंद। इन तीनों भाइयों के 50 बहनें थी जिन्होंने सौवरी ऋषि को अपना पति चुना। तो अभी जो है यम, अभी यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, समय तो चल रहा है, हम क्या करेंगे, टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं। यमुनांतर जले मग्न तप्यमान परम तप निप्रति मीन राजस्य दृष्ट्वा मैथिन धर्मिण जाति स्प्रो नृपम नृपम विप्र कन्या मेकामयाचत सोप्याह गृहताम ब्रह्मन कामम कन्या स्वयंवरे। तो बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी कि यमुना अंतर जले मग्न तप्यमान परम तप, उस यमुना जल में जहां मंदाता है, मंदाता कहां के राजा थे, मथुरा के थे, तो यमुना जी मथुरा के बिल्कुल नजदीक में बहती, वहीं जो है सौवरी ऋषि क्या करते थे, हाँ उनका आश्रम था लेकिन वो कुटिया में तपस्या नहीं करते थे, वो कहाँ तपस्या करते, ये यमुना अंतर जले यमुना के अंदर जा करके और बैठ करके जो है वहां तपस्या करते थे। और निवृति मीन राजस्य दृष्ट्वा मैथिन धर्मिण, तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि एक मस और अपनी परिवार के साथ में क्या है, वो जो है मैथुन रत है, तो इसको उन्होंने क्या किया, सौवरी ऋषि ने देखा तो जात इस प्रभु निरपम प्रप्य कन्या मेका ये याचत सो अप्याह गृहताम ब्रह्मन कामम कन्या स्वयंवरे, तो जो है उससे उनके अंदर क्या हुआ और उससे जो है उनके अंदर काम वासना जागृत हुई। मस और मछली को मिलते देख करके और महाराज सौवरी का मन बेचैन हो गया, और बेचैन हो गया तो उन्होंने तपस्या छोड़ी और जमुना जी से बाहर आए और सीधे मंदाता महाराज के पास में गए और महाराज से कहा, महाराज आप क्या करो, अपनी एक कन्या मुझे दो, शादी करो मेरे साथ में। तो उस समय जो है सौवरी ऋषि की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय स्थिति थी, क्योंकि जमुना में रहते 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 उनका शरीर का जो खाल थी वो सब कैसी हो गई थी, गल जैसी गई थी, जो पानी में रहता है ना उनकी खाल गल जाती है, जैसे होता है कि नहीं होता है, और फिर वृद्धावस्था के कारण उनकी जो खाल लटकी हुई थी, तो कोई खास वो सुंदरता सुंदर नहीं थे, देखने में कोई स्वरूप नहीं लगते थे। अब भाई जब स्वरूप नहीं है चलो कोई बात नहीं है, शरीर स्वस्थ रहता है फिर भी सोच लेते हैं चलो कोई बात नहीं है, लेकिन शरीर भी कैसा था उनका, बिल्कुल जो है एक जैसे वृद्ध शरीर का पूरा शरीर लटक जाता है, तो ऐसे उनकी खाल लटकी हुई थी। तो इसको देख करके महाराज मंदाता ने जो है उनको डायरेक्ट तो मना नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि डायरेक्ट मना करता हूँ तो जो है ऋषि हैं कुछ भी श्राप दे सकते हैं, तो इसलिए जो है वो इस बात को तो उन्होंने देखा कि डायरेक्ट मना नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल महाराज आपके लिए भला थोड़ी मैं मना कर सकता हूँ, लेकिन मेरी जो पुत्रियाँ हैं वो क्या हैं, वो उनके लिए जो है फ्री है, को किसी को भी अपनी इच्छा से पति चुन सकती हैं, इसलिए आप क्या करो रनवासों में चले जाओ जहाँ मेरी कन्या है, और जो आपको जो है चुने आप उसके साथ में शादी कर लेने का कोई बात नहीं है। क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से मतलब बोलना चाह रहे थे कि इसको भला बूढ़े को जो है कल ही मालूम चला गया राम नाम सत्य हो करके जो है लेकर के तो इसलिए वो नहीं बोलना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसको कौन जो है चुनेगा, लेकिन चलो ठीक है जाने दो अपने आप जो है वहां से धक्का खा के आ जाएंगे इधर चाचा सुन करके। तो फिर जो है लेकिन सौवरी भी कोई कम कम साधारण नहीं थे, तो यहाँ हम जो है इसमें ही हम ज्यादा न बढ़ करके यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि यहाँ सौवरी ऋषि की कहानी का शुभारंभ होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार मंदाता मथुरा के राजा थे और सौवरी ऋषि यमुना नदी के गहरे जल में तपस्या कर रहे थे। जब ऋषि में काम इच्छा जगी तो जल से बाहर निकले और राजा मंदाता के पास जाकर उन्होंने कहा कि आप एक पुत्री का विवाह उनसे करते हैं। तो अभी जो है ये वाली बात तो यहाँ रही, लेकिन अभी हमें मतलब जानना चाहिए कि देखो सौवरी ऋषि उन्होंने देखा कि मैं पृथ्वी पर रहूंगा तो यहाँ तो जो है कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता रहेगा, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मैं जल के अंदर रहूंगा तो बिल्कुल सेफ रहूंगा, वहां कोई जो है संसार का भौतिक आकर्षण नहीं होगा, इंद्रियों का आकर्षण नहीं मिलेगा। जब इंद्रियों का आकर्षण नहीं होगा तो मेरी इंद्रियां आकर्षित नहीं होंगी किसी विषय की तरफ, और जब विषय की तरफ इंद्रियां आकर्षित नहीं होंगी तो आराम से मैं भजन करूंगा। तो ये तो उनकी प्लानिंग थी, और ऐसी प्लानिंग कभी कभी हम भी कर लेते हैं, अरे यहाँ तो बड़ा डिस्टर्बेंस है, अरे ये आ रहे हैं वो है, इतने सारा जो है भरा पड़ा है, चारों तरफ माताएं घूम रही हैं, कहाँ क्या करें, कहीं ऐसी कोई गुफा मिले जहाँ जा करके भजन करें, तो ये गुफा में तो ये भी घुसे थे। सोचो कभी कभी हम भी ऐसा ही सोचते हैं किसी निर्जन स्थान में जा करके भजन करना चाहिए, तो इससे निर्जन कहाँ होगा भैया, वो भी तो जमुना के जल में घुस के बैठे जप कर रहे थे। तो कभी भी हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि कभी भी इस प्रकार अपनी मानसिक चेतना को नहीं बनाना चाहिए कि हमें बिल्कुल एकांत में जहाँ कोई नहीं हो ऐसे स्थान में जाना चाहिए, तो ये हमेशा समझना चाहिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई ना हो, जहाँ भी आप जा रहे हैं सब जगह सब कोई मिल सकता है। तो इसलिए हमारी जो यदि हम भक्तों की संगति का त्याग करते हैं, ठीक है ना, भक्तों की संगति का त्याग करते हैं तो समझ लेना चाहिए पूरे ब्रह्मांड में कोई भी स्थान सेफ नहीं है, कोई भी स्थान सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, आप ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ। तो इसलिए सिद्धांत इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि सौवरी जैसे ऋषि एक जमुना जल में बैठ करके जमुना में जो है वो बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, वहां भी एक साधारण मछली और मत्स्य को देख करके उनका जो है काम वासना जागृत हो गई। तो इसलिए ये जो विषय है वो कहीं भी जागृत अवस्था हमारी जो है जागृत हो सकते हैं। तो पहला सिद्धांत जो है आगे चल करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरी बोले हैं कि इतने बड़े ऋषि थे तो उनका ऐसे क्यों पतन हुआ, क्यों ऐसे काम थोड़ी सी जो है एक मछली को देख करके आकर्षित हुए। तो उन्होंने जो है मेंशन किया है क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। ध्यान से सुनना चाहिए, वैष्णव अपराध कहां उनका भाई वैष्णव अपराध हो गया तो हुआ था, और वो किसका अपराध हुआ उनके साथ में, गरुण जी का अपराध हुआ था। जो गरुण जी जो है भगवान के क्या है, वाहन है, भगवान के परम भक्त हैं, और जिसके कारण भगवान ने उनको अपना वाहन करके स्वीकार किया है। तो गरुण जी क्या करते थे, दो स्थानों पर अपने शिकार के लिए जाया करते थे, एक तो यहां जो है आते थे जमुना में, और दूसरा जो है रमणक द्वीप जाते थे जहां नागों का लोक है। इन दो स्थानों पर वो शिकार के लिए जाते थे। तो उसकी जो है काली की कथा तो आप लोगों ने सुनी है कि वहां जब जाते थे तो कई सारे जो है सर्पों को खाते थे, कुछ मार मुर करके तड़पते हुए छोड़ छाड़ करके भाग जाते थे। तो इसको देख करके जो है उनको ये ठीक नहीं लगा, तो सब सबको बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखा, फ्यूचर में जो है हम सभी के ऊपर आने वाली है संकट भयानक, इससे कैसे बचना चाहिए। तो उन्होंने मीटिंग किया, सब बड़े बड़े सर्प वहाँ जो है बास्कु भी थे, काली था और भी कई सारे सर्प थे, तो सब ने जो है ये डिसाइड किया कि हम जो क्या करेंगे इनके लिए कोई एक बढ़िया सा का मतलब थोड़ा हष्ट पुष्ट जैसे उसका पेट भर भी जाए और वो क्या करें, एक सर्प उनको रख दिया करेंगे पेड़ के नीचे बाहर और वहीं से वो खा पी करके अपना वहीं से वह चले जाए, फिर सभी सर्पों को ज़्यादा डिस्टर्ब न करें। तो ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया, सभी ने साइन कर दिया, काली ने भी साइन किए थे वहाँ। लेकिन हुआ क्या, काली बड़ा उस्ताद था, बोला अच्छा हम लोग सर्प जाति, हमारी सर्प जाति है और हम क्यों नहीं खाएंगे, वो जो है कहां से इतना जो है आ करके जो हमारे उसमें जो दखल दे रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखते हैं हम उसको आने दो। और क्या हुआ कि जिस दिन जो है वो सर्प रखने वाला था, काली आ गया, वो खा भी करके आ गया, गरुड़ जी गए देखा तो कोई नहीं है वहां, चलो हो सकता है अभी तो मीटिंग हुआ तो हो सकता है भूल गए हो, आगे थोड़ा सा बता देते उनको भाई नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, नहीं तो फिर हम जो है जो करना है हम वही करेंगे। तो बता बुत के चले आए, तो किसी को कुछ मालूम नहीं चला भाई कौन खा गया। दूसरी बार गए तो जो है इंक्वायरी हुई भाई कैसे क्या है, तो मालूम चला जो है दूसरी बार रखा तो जो है क्या नाम काली आया और फिर जो है उसको खा गया। तो दूसरी बार जब गरुण जी ने देखा कि भाई दूसरी बार नहीं रखा है, तो उन्होंने जो मेन जो है वहाँ के लीडर थे वासुकी से बात किया कि भाई क्या बात है, उस दिन तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि एक सर्प रखा जाएगा, लेकिन है कहाँ सर्प, दो बार आया दो बार भी मेरे को कुछ नहीं मिला यहाँ से। बोला नहीं सर्प तो रखा था, बोला सर्प रखा था हमने तो देखा नहीं कहाँ सर्प है। तो उसकी इंक्वायरी हुई तो मालूम चला कि वो काली खा जाता, सर्प तो गया था लेकिन बीच में काली खा गया। अब तो जो है गरुड़ जी का क्रोध बहुत बढ़ गया और इतना क्रोध उनको हुआ और उन्होंने क्या किया, काली पर जो है गरुड़ जी ने काली के ऊपर बहुत बड़ा छपट्टा मारा, तो जिससे जो है काली इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि वो जमुना के जल में जा करके छुप गया। क्योंकि जहां आगे चल करके हम देखेंगे कि वहां जो है क्या नाम है वो नहीं आती है, गरुण जी वहां नहीं पहुंचते हैं, ये उसको मालूम था। पहले भी जो है क्या नाम है, जैसे आजकल जो है मीडिया बड़ा प्रभावशाली है, आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं तो तुरंत मालूम चलता है, उसमें यूट्यूब में देखो या उसमें देखो वो फलाना व्यक्ति वहाँ ऐसा कर रहा था वहाँ कैसा कर रहा था। तो इसलिए तीनों लोकों में कहीं भी कोई भी मैसेज होता था तो मालूम चल जाता था एक दूसरे को फटाफट। तो कालियों को भी मैसेज मालूम चल गया था कि गरुण उस स्थान पर नहीं जाते हैं। तो कहाँ नहीं जाते, तो इसी स्थान पर जो है गरुण जी नहीं जाते थे, जहाँ ये जो है सौबरी ऋषि रहते हैं। क्यों नहीं जाते थे, तो जैसे जो है वहां भी ये जाते थे उनके लिए, तो यहाँ भी कभी कभी बीच में मछलियों को खाने के लिए यहाँ आ जाते थे, यहाँ सौबरी ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने देखा कि जो है एक दिन क्या किया, उन्होंने मछलियों के जो लीडर था उसको पकड़ लिया गरुण जी ने और पकड़ करके उसको खा गए। तो जब पकड़ करके जो है उनका लीडर को खा गए तो मछलियां और बच्चे बेचारे जो है दुखी हो गए, पापा नहीं है तो अब क्या दिक्कत क्या, तो बेचारे बड़े रोने लगे, माँ 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 पापा कहाँ है, तो बेचारे वो क्या बताए पापा को, तो खा गए गरुण जी। तो उस समय जो है ये सारा देख रहे थे कौन, सौवरी ऋषि देख रहे थे। अब सौवरी ऋषि देख रहे थे तो उनको ये सहन नहीं हुआ और इमीडिएटली उन्होंने श्राप दिया कि गरुण मैं आज ये तुम्हें ये श्राप देता हूं कि भविष्य में तुमने दोबारा यहां आकर के और इस प्रकार मछलियों का खाने का प्रयास किया तो तुम जिंदे नहीं रहोगे, ये मेरा वचन है। तो गरुण जी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं तुम्हारा वचन है मैं स्वीकार करता हूं। तो ये उन्होंने श्राप तो दे दिया लेकिन वास्तव में ये श्राप उचित था या अनुचित था ये उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि जीव जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीवन का जीव का भोजन है, ठीक है ना। पशुओं को कोई पाप नहीं लग रहा है, गरुण जी यदि मछली खा रहे हैं, शेर यदि किसी जो है उसका गाय का वो कर लेता है तो उसको पाप नहीं लगता है, ठीक है ना, क्योंकि जंगली हैं उनको तो एक दूसरे को खाना ही खाना है। तो यहाँ जो है गरुण जी को कोई पाप नहीं था, मछलियों को खा रहा था, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती टांग अड़ा दी जो है सौवरी ऋषि ने और जो है एक भक्त को जो है श्राप दे दिया, है कि नहीं। अरे भाई श्राप, भक्त को श्राप देना एक बहुत बड़ी बात होती है। श्राप देना, हम केवल किसी भक्त के बारे में गलत सोच लेते हैं, केवल सोचने मात्र से, गलत सोचने मात्र से उसका एक्शन हमें भुगतना होता है इमिडिएटली, ये वैष्णव अपराध जो है इतना भयंकर होता है। तो इसके बारे में जो है एक छोटी सी कथा आती है, आप सभी सुने भी होंगे। तो एक बार जो है रूप गोस्वामी क्या कर रहे थे, वृंदावन में भजन कर रहे थे, और भजन कर रहे थे तो भजन करते करते वो भगवान की जो है कुछ लीलाओं के दर्शन कर रहे थे, और उसमें क्या लीला थी, लीला ये चल रही थी भगवान जो है के भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी क्या है, भगवान कृष्ण ने क्या किया है, एक डाली को नीचे झुका करके रखा है और राधा रानी उससे क्या कर रही है, फल तोड़ रही है। तो अचानक जो है एक हाथ से वो पकड़ी हुई है, एक हाथ से फल तोड़ रही है, अचानक भगवान ने क्या किया, भगवान ने थोड़ा सा मजाक किया, और मजाक किया क्या, उन्होंने क्या किया कि जो डाली थी जो भगवान झुकाए हुए थे, अचानक उन्होंने उस डाली को छोड़ दिया। तो डाली को छोड़ दिया तो राधा रानी क्या की, वो डाली के साथ ही ऊपर चली गई। तो ऊपर चली गई तो जो है रूप गोस्वामी को थोड़ा हंसी आ गई। तो जब हंसी आ गई उनको तो उसी समय क्या हुआ, एक जो है एक व्यक्ति जा रहे थे जो क्या थे, थोड़ा सॉरी हाँ वो अलग हो सकता है, ये भी अलग हो सकता है कैसा। तो हुआ हाँ वो थोड़ा सा कैसे चलते, टेढ़े चलते थे। हाँ उनका नाम कृष्णदास बाबा जी था। हाँ तो कृष्ण प्रभु जी ने बताया कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो वो क्या थे, उसी समय उनका निकलना था और उसी समय इनका हंसना हुआ। तो उन्होंने देखा अरे इतना बड़ा संत है रूप गोस्वामी, तो इतना बड़ा नाम है और मेरे शरीर को देख करके हंसते हैं। तो उनको थोड़ा सा फीलिंग गलत हुआ, उनको फीलिंग ऐसा लगा देखो इतने बड़े महात्मा होकर के भी मेरे शरीर को देख करके, भाई ये तो मेरा जो भी है मेरे कर्म के अनुसार जैसा शरीर मिला है तो इनको हंसना नहीं चाहिए। तो वो दुखी होकर के वहां से फिर वो चले गए, आगे बढ़ गए। इधर क्या किया रूप गोस्वामी ने, फिर से जो है उन लीलाओं का दर्शन करना चाहे, लेकिन अब वो लीला अदृश्य हो गए, अब वो लीला जो है उनके स्मरण में नहीं आ रही है। जब स्मरण में नहीं आ रही है तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों नहीं आ रही है, बहुत बहुत प्रयास किया बार बार लेकिन फिर भगवान की लीला स्मृत नहीं हुई। तो इसलिए एक उन्होंने एक दिन जो है सनातन गोस्वामी उनसे मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, कई दिन हो गए और मालूम नहीं क्या हुआ कि ऐसे जो है, पहले तो मेरे को कभी कभी ठाकुर जी की लीला कुछ स्मृत होती थी लेकिन अब बिल्कुल नहीं हो रही, क्या हुआ, ऐसा कौन सा अपराध बन गया, मैं तो कहीं गया भी नहीं ज्यादा, किसी से मिला भी नहीं। तो उन्होंने कहा हो ना हो ये वैष्णव अपराध का ही फल है। तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई वैष्णव अपराध नहीं किया, मैं कोई ज्यादा वैष्णव से मिला नहीं कभी, कोई ऐसा मेरा कोई कुछ वाद विवाद भी नहीं हुआ जिसके कारण हुआ। बोला कुछ न कुछ हुआ है तो कैसे मालूम चलेगा। बोला ऐसा करो भंडारा करो सबका, साधुओं को जो है प्रसन्न करना है तो भंडारे से प्रसन्न हो जाते हैं, पहला जो है माला डाल दो फिर खिला दो और प्रसन्न करना है इमिडिएटली, तो थोड़ी हल्की सी दक्षिणा दे दो बस, फिर तो जो चाहे वो आशीर्वाद ले लो। तो इसलिए जब भंडारा किए तो सभी भंडारे में क्या हुए, क्योंकि उस समय तो वृंदावन में जब रूप गोस्वामी थे तो इतने साधु नहीं थे जैसे आजकल, तो इतना सारा साधु है वृंदावन में के कौन भंडारे में आ रहा है कौन जा रहा है किधर से आया किधर से नहीं आया कुछ मालूम नहीं पड़ती है, इतना साधु महात्मा है वृंदावन धाम में। पहले तो बंदर थे अब साधु हैं, दोनों का ही जो है जोर शोर है वृंदावन धाम में, वृंदावन धाम के। तो इसलिए पहले इतना वो नहीं था, साधु नहीं थे, तो उनको मालूम चला गया फलानी कुटिया वाला बाबा आ गया, ये अमक वाला बाबा आ गया, यहाँ से आ गया गोवर्धन वाला आ गया, ये नंदगांव वाला बरसाने वाला है। तो उन्होंने देखा रे वो बाबा नहीं आया, बोला हाँ वो बाबा तो नहीं दिखाई दे रहा। बोला क्या बात है भाई वो बाबा क्यों नहीं आया। तो फिर वो जो है उनके पास में गए कि महाराज आज तो भंडारा था, आपको तो हमने कूपन भेजा था, आपको मिला कि नहीं मिला, क्योंकि कूपन सिस्टम पहले से ही है आपके लिए, तो हमने कूपन पहले भेज दिया था, तो आपको आना चाहिए। तो उन्होंने बताया है मैं आना चाहिए, एक तरफ मेरी तुम बेइज्जती कर रहे हैं मेरे शरीर को देख के हंसते हो, एक तरफ बोलते हैं कि जो है भंडारे में आना चाहिए, ये कैसे हो सकता है। बोला महाराज बेइज्जती किया और आपको हंसा, ये तो मैंने कभी, मेरी तो आपसे भेंट नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई उस दिन जो है आप बैठे थे वहाँ जो है झोपड़ी में शाम के समय, जब मैं जा रहा था तो उस समय आप हंस रहे थे कि नहीं हंस रहे थे। कौन से दिन? अरे वो एक हफ्ते पहले जो है उस दिन की बात है जब मैं जा रहा था उधर से, तो आप बैठे थे आँख बंद करके, हो सकता है कि मेरे को देख करके आँख बंद कर ली हो, तो उस समय आप हंस रहे थे, मैंने देखा था खिलखिला करके। तो फिर रूप गोस्वामी ने सोचा अरे उस दिन, तब उन्होंने कहा कि उस दिन वास्तव में महाराज मैं आपको देख करके नहीं हंसा उस दिन। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं भगवान की इस लीला का स्मरण कर रहा था, तो इस जब भगवान ने जो है वो डाली छोड़ दी तो राधा रानी कैसे डाल के साथ में ऊपर उछक गई, इसको देख करके मेरे को हंसी आ गई थी, तो इसलिए मैं आपको देख करके नहीं हंसा। इसलिए आप जो भी हैं आपने ऐसा महसूस किया कि मैंने हंसा, मैं क्षमा याचना चाहता हूँ, मैं कभी भी आपसे नहीं। और इस प्रकार उन दोनों में वांछा कल्प तरु हुआ और फिर ये मैटर जो है शांत हुआ और फिर जो है उनकी लीला इसमें। तो इसको हम सोच सकते हैं कि वैष्णव अपराध कितना खतरनाक होता है। तो हमें बहुत जो है भक्तों को सतर्क रहना चाहिए, हम जो है हो सकता है कि प्रट्टीकरण नहीं कर रहे हैं, अर्थात केवल कोई गाली नहीं दे रहे हैं या कोई हाथ से नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि मन से भी सोच लेते हैं तो भी उसका एक्शन हमें भुगतना ही होता है, जिसका प्रत्यक्ष कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो है रूप गोस्वामी हुए, और क्रिया में लिए जो है सौवरी ऋषि का देख लो, उनका पतन हुआ कहाँ थे, कितने उच्च स्तर पर आगे चल करके कितना रोएंगे सौवरी ऋषि, अपना पश्चाताप करेंगे, सुनेंगे हम कैसे देखो मैं भगवान के भजन में किस उच्च अवस्था तक पहुंच गया, लेकिन ये देखो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जो है एक मछली को देख करके जो है पतित हूं। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि संगति भक्तों की संगति, और पहला है वैष्णव अपराध, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, और दूसरा है कभी भी हमारे मन में विचार आता है चलो यहाँ तो जो है बहुत सारे भक्त हैं, ये तो सब जो है यहाँ हमारी चलती नहीं है, वो हमारी सुनता नहीं है, कहीं ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ कोई ना वो वहाँ बैठ करके भजन करेंगे, तो ये बिल्कुल सत्य है सत्य है सत्य है, आप भजन वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है एकांत में जा करके हम भजन करें। अरे भाई इतने भक्तों में रह करके भी हमें क्या नहीं कर जाते हैं, सब देख रहे हैं, सब जो है बात करते रहते, फिर भी हम जो है कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर वहाँ तो कौन देखने वाला है कि नहीं। तो इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए, भक्ति की भक्तों की संगति में रहना चाहिए, और जिसका उदाहरण है कौन, भरत महाराज। भरत महाराज भी पुला आश्रम में रह करके भजन कर रहे थे एकांतवास, और वहाँ जो है किस स्तर पर थे, जिन्होंने पूरा अपना ऐश्वर है, जैसे मंदाता का ऐश्वर था ऐसी भरत महाराज का था। देवता भी जो है क्या करते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे उनके ऐश्वर को देख करके। लेकिन ओ सम्राज भरत अम्बरीश महाराज ने क्या, उन्होंने भरत महाराज ने क्या किया था, उसको बड़ी आसानी से जो है त्याग कर दिया था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आप सोच सकते हैं कितने बड़े वो नहीं होते, जो बैठते थे भगवान के ध्यान में तो गंगा यमुना जैसी धारा बहती थी, इतना जो है ठाकुर जी के प्रेम में उनका आंसू निकलते थे विरह में। ओ भरत महाराज जो है एक हिरण के प्रति इतने आसक्त हुए तो जो है अंत तक जो है मरते दम तक उनका हिरण का ही सोचते रहे। तो ये हुआ एकांत है, एकांत का कितना बुरा परिणाम हुआ। यदि कोई होता वहां, कोई भक्त संगति होती तो कम से कम वो उनको समझाता रहता, भाई देखो तुम भजन के लिए आए, घर तो छोड़ दिया है, घर से तो बोल करके आए चलो भजन करेंगे, क्या वास्तव में यहाँ करके हम भजन कर रहे हैं, क्या फिर और कुछ दूसरा ही जो है प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तों के बीच में रहेंगे तो बराबर हरिबोल चलो मंगल आरती हरिबोल चलो सेवा के लिए चलो, वो तो कम से कम बोलता रहेगा। और दूसरे स्थान पे एकांत में तो कौन मंगल आरती कौन सेवा, ये माला बहुत जप किया, ये तुम इधर रहो अब हम आराम फरमाते हैं, वहां कौन बोलने वाला, यहाँ तो जबरदस्ती। एक दिन परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक लेक्चर में बोल रहे थे, ओनली दो मिनट में समाप्त करता हूँ लेक्चर में बोल रहे थे कि देखो भक्तों की संगति कितनी महत्वपूर्ण होती है भक्तों के लिए। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग जो है जब मंगल आरती का समय होता है तो अपने पड़ोस बाजी में सो रहा है, हरिबोल हरिबोल मंगल आरती उठो 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 3:30 बज गया जाओ नहा लो, और खुद जो है क्या है उसको उठा देगा और बाद में आके खुद सो जाएगा। तो कम से कम उसने उनको तो उठा दिया ना, उसको मालूम है मंगल आरती का फल कितना अच्छा होता है कि नहीं होता है, कम से कम उनको उठा दिए। तो ऐसे ही भक्तों के बीच में तो हम नहीं चाह करके भी क्या हो जाता है, जप हो जाएगा, हम जानते मन नहीं लग रहा है लेकिन वो फला देख रहा है ना, कमांडर देख रहा है, देख रहा है, हालत खराब करेगा अभी नहीं तो। तो उनके भय से हम जप करते हैं। तो इसलिए हमें जो है बड़ा सावधान रहना चाहिए कि जो है भक्तों की संगति कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, और मन में ऐसे कभी कुत्सित विचार आते हैं कि एकांत स्थान में यस ऐसे जा बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है, अब टाइम तो बहुत हो गया, फिर भी अब चाहते हैं तो एक दो मिनट दे सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्णा। कोई पूछना चाहता है कुछ, पूछो पूछो, माइक है माइक दे दो उनको।
हरे कृष्ण प्रभु जी, वैसे मुझे प्रश्न नहीं था, वैसे आंसर्स भी कुछ मन में बन रहे हैं। जो मुनि जल के भीतर अपनी श्वसन क्रिया को रोक सकता है, क्योंकि हम मछली नहीं है हम मानव हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो अलग होता है, नाक के थ्रू लेते हैं और इस तरह से, तो वो जो जो सांस को रोक ससकता है वो अपने काम क्रिया को कैसे नहीं रोक पाया, ये पहला प्रश्न था। और दूसरा कि उसके बस इसी प्रश्न मेरे जटिल प्रश्न यही था।
देखिए सांस को उन्होंने रोकने का तो पूरा अभ्यास किया था, कई सारी प्रैक्टिस चल रही है, तो योग में कभी कभी जो है सांस को रोक लेते हैं, लेकिन जब तक हमारी योग की प्रक्रिया चालू रहती है, वो भी किसी परफेक्ट योगी से, हम जो है इस सारी चीज को इस प्रोसीजर को हम सीखे हैं ठीक से किए हैं तो रोक सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक सांस को रोकना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा जो है उसी प्रकार जो इंद्रियों को भी रोकना, क्योंकि इंद्रियां अनादिकाल से हमारी फ्री रही हैं, ठीक है ना। तो जो फिर हमेशा जो अनादिकाल से स्वतंत्र रही हैं, जिनको जो है जैसा चाहे खाएं जैसे चाहे पिए, तो उन इंद्रियों को फिर हम इमिड ऐसे एक साथ एक एक साथ में कंट्रोल करना, इमिडिएटली कंट्रोल करना और उनको कंट्रोल करके एक लंबे अंतराल तक रखना, ये कोई आसान बात नहीं है।
ठीक है, वो हो ही गया, फिर आकर के मुझे शादी कराओ शादी कराओ इस तरह से, ये भी मतलब
तो इसलिए तो जो है इंद्रिया बलवान इंद्रिया ग्रामम विद्वान समपि कर सती, इसलिए तो बोलते हैं कि इंद्रिया इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी वो क्या करती है, धराशायी कर देती है, ऐसे व्यास जी बोलते हैं। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सांस को बस में कर लिया है तो इसलिए मैं इंद्रियों को भी बस में करके रख सकता हूँ। आप समझ रहे ना, सांस को बस में कर लिया है तो इसका मतलब नहीं है कि हम हर चीज में दक्ष हो गए हैं, तो हमें इंद्रियों का भी जो है क्या करना चाहिए, दमन करना चाहिए।
हरे कृष्ण भाई जी, जैसे हमने ये रूप गोस्वामी की कथा बताई कि कैसे एक ब्राह्मण जो कि खाली मतलब उन्होंने इंटेंशनल नहीं किया था लेकिन उन्होंने ऐसा लिया कि वो अपराध कर रहे हैं, तो उनको उनको मतलब रूप गोस्वामी को उनका उस अपराध का उनको लगा ये अपराध। तो मैंने मतलब जैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ भक्त हमारे निर्णय से प्रसन्न होते हैं, कुछ नहीं प्रसन्न होते और उन्हें दिक्कत भी होती है और सबको प्लीज़ करना मतलब पॉसिबल भी नहीं होता, तो क्या क्या करना चाहिए हमें कि वो वैष्णव अपराध मतलब कोई ड्यूटी मतलब हम नहीं चाह रहे फिर भी वो उस इंटेंशन से ले रहे कि हम मतलब।
इसलिए तो मैनेजमेंट जो है कोई ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, विभाग नहीं है। ये भक्त जो उन्नति करना चाहते हैं ना, जिन भक्तों को उन्नति करना है वो ज़्यादा मैनेजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। मैनेजमेंट कोई खास अच्छी चीज़ नहीं, इसलिए बड़े बड़े आप देखो नारद जी मैनेजमेंट नहीं संभाले है कि नहीं, उन्होंने नहीं संभाला। और आपके जो हैं जैसे चतुर कुमार थे इतने हाई फाई लेवल के थे वो, तो लोगों को कहा तो भाई मैनेजमेंट संभाले, बोला रहे इनमें झमेले में कौन मैनेजमेंट में पड़ेगा, अरे भाई जिसको ज़रूरत है वो दूसरा पैदा करे, हम तो अपना भजन करेंगे। मैनेजमेंट कोई अच्छी, फिर भी चूंकि स्पिरिचुअल मैनेजमेंट है लेकिन इसमें भी हमको बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, पूरा डेडिकेट होकर के समर्पित होकर के अपना स्वार्थ, जहां अपना स्वार्थ रख करके मैनेजमेंट करेंगे 100% सत्य है उसको गिरना ही है। अब किस किस दिशा में गिरेगा कैसा गिरेगा ये अलग हो सकता है लेकिन उसको गिनना ही है। यदि जहां हमारा स्वार्थ हो गया तो यदि स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से गुरु और गौरांग के आदेश के अनुसार यदि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनका आदेश है, मैं तो एक निमित्त बात बन करके उनका जो है आदेश का पालन कर रहा हूँ, मेरा उसमें कुछ लेन देन नहीं है, कल उठाएं आज उठा दें नहीं उठाएं चलने दो क्या फर्क पड़ता है उसमें। तो इस प्रकार यदि मैनेजमेंट करेंगे तब तो जो है कुछ उम्मीद है कि हम बच सकते, लेकिन जहाँ हमारा स्वार्थ रहता है और हम जो है उनसे हटकर के कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं तो गारंटी है उसका पतन होगा ही होगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के निताई गौर प्रेमनंदे।